ओम शांति। तो आज से हम वो सीरीज चालू कर रहे हैं अमृत वेला पर, और ये बुक का नाम है बाप समान बनाने वाली दिव्य शिक्षाएं। इसमें कुछ पॉइंट भी है अमृत वेला के जो हम संडे को पढ़ेंगे। तो आज पहला सेशन है। तो अमृत वेला, सबसे पहले तो शब्द का मीनिंग, अमृत वेला अर्थात क्या? अमृत अर्थात नेक्टर और वेला यानी कि समय। कई बार इसको कहते हैं अमृत वेला या अमृत बेला, ऐसे भी शब्द यूज करते हैं। तो ये शब्द कहाँ से आया? जैसे कि वो कथा में बताते हैं ना कि सागर मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला, और फिर देवताओं और दानवों के बीच जो युद्ध चला तो छल से देवताओं ने वो अमृत ले लिया और पी लिया, और कहते हैं कि जो ये अमृत पीता है वो चिरंजीवी बन जाता है, यानी कि वो जो जिसकी मृत्यु नहीं होती, वो व्यक्ति जो सदा जीता है। तो आज के वैज्ञानिक भी ऐसे रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा कुछ इनको दवा मिल जाए जिससे इंसान हमेशा के लिए जवान रहे या हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो ये अमृत वेला, तो शुरू करते हम। अमर भव का वरदान दे सर्व प्राप्तियां कराने वाला अमृत वेला। तो बाबा ने अमृत वेला के बारे में बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। जब हम ब्राह्मण जीवन में आ जाते हैं तो सबसे पहली जो हम श्रीमत फॉलो करते हैं वो है अमृत वेला की। सबसे दिन की जो हमारी शुरुआत है वो है अमृत वेला से। तो बाबा ने कई बार अमृत वेला के बारे में कहा है कि जो अमृत वेला है वो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर इमारत को अगर इमारत खड़ी होनी है तो उसका फाउंडेशन पर ध्यान दिया जाता है, तो अमृत वेला भी हमारी दिनचर्या का फाउंडेशन है। अगर अमृत वेला हमारा ठीक होगा तो पूरा दिन हमारा ठीक होता है। अगर हम इस समय श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो हमारे दिन भर में जो कर्म होंगे, संकल्प होंगे, वो भी श्रेष्ठ होंगे। बाबा ने कहा है कि अमृत वेला सर्व प्राप्तियों का समय है। बाबा ने कहा कि अमृत वेला अमर भव का वरदान प्राप्त करने का समय है। तो जैसे कि सर्व प्राप्तियों से है जय इस समय, तो अमर भव यानी कि जीवन, हमारा जो ब्राह्मण जीवन है उसमें हम महानता का अनुभव करेंगे अगर हम रोज अमृत वेला करेंगे। तो बाबा ने अमृत वेला को कहा है कि अमृत वेला जैसे कि लॉटरी है एक, जैसे किसी को घर बैठे लॉटरी मिल जाए तो कितना खुश होगा, तो वैसे ही अमृत वेला भी बड़े से बड़ी लॉटरी है क्योंकि सर्व प्राप्तियों का समय है ये। बाबा ने कहा कि अगर अमृत वेला करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर हम शक्तिशाली अमृत वेला करते हैं तो पूरे दिन में हम माया के विघ्नों से बचे रहते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि अमृत वेला जो है वो बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। जैसे कि अगर सुई में किसी को इंजेक्शन लगाओ तो वो कैसे काम करता है, तो वैसे ही अगर अमृत वेला ये बड़े से बड़ा इंजेक्शन लगाएंगे तो पूरे दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। तो ऐसी कई चीजें बाबा ने अमृत वेला के बारे में कही है। बाबा ने इतना भी कहा है कि सारा संगम युग ही अमृत वेला है, पूरा के पूरा। संगम युग को बाबा कहते हैं डायमंड युग, तो पूरा ही संगम युग अमृत वेला है। और अगर हम अमृत वेला लेट उठते हैं या अमृत वेला नहीं उठते हैं तो हमारे वहां के जन्म भी कम। तो बाबा ने कहा जैसे आदि काल आपका अगर ठीक होगा तो मध्य और अंत भी ठीक होगा। तो अमृत वेला अगर कुछ घंटे के बाद करते हैं या देर से करते हैं तो वहां के उतने जन्म कम हो जाएंगे हमारे सतयुग के। तो इतना इम्पोर्टेंस है अमृत वेला पे। तो पहली पॉइंट है इसमें, यह है अमृत वेला का महत्व एवं फायदे। फर्स्ट पॉइंट है, अमृत वेला चारों ओर के तमोगुणी वातावरण या वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्रायलोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर पुकार सुनना भी सहज है तो उपकार करना भी सहज है, वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप वरदानी आत्माओं की स्थिति भी बाप के विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप समान संपन्न और दातापन की होती है। अमृत वेले ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहा जाता है। तो क्या कहा बाबा ने, अमृत वेला चारों ओर के तमोगुणी वातावरण या वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्रायलोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ये जो समय है अमृत वेला, ये समय बहुत शक्तिशाली और बहुत साइलेंस होता है, बहुत जैसे कि बहुत हाई एनर्जी है इस समय में, तो सबके मन शांत होते हैं उस समय, तो जो वातावरण भी होता है वो शक्तिशाली होता है। जैसे लौकिक में भी कहते हैं ना कि अगर किसी को पढ़ाई करनी है तो सवेरे उठ के पढ़ाई करो। जब सवेरे उठ के पढ़ाई करते हैं तो जैसे कि वो बुद्धि में ऑटोमेटिकली जाता है, और अगर दिन भर वो करेंगे वही तो उसमें मेहनत लगती है। तो यहाँ पर भी जैसे तमोगुण का प्रभाव नहीं है उस समय, दबा हुआ है उस समय, तो इस समय हमारी जो बुद्धि है वो बहुत जैसे कि चार्ज्ड है, फलदायक है, फर्टाइल, ग्रहणशील है, फर्टाइल लैंड है। जैसे कि अगर जो भी हम संकल्प रूपी बीज इसमें डालेंगे तो वो जैसे फलीभूत होगा। तो यहाँ पर भी जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो हम जो भी सोचेंगे संकल्प करेंगे वो होते जाएगा, वो ऐसा वातावरण है ये। तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा पुकार सुनना भी सहज है तो अब उपकार करना भी सहज है, वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप वरदानी आत्माओं की स्थिति भी बाप के विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप समान संपन्न और दातापन की होती है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। तो जैसे कि अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में कि हमारी कोई ऐसी आदत है, हमारा ऐसा कोई संस्कार है जो नहीं बदल रहा है, जो हमारे पुरुषार्थ में बाधा बन रहा है, तो हम उस संकल्प को लेके अमृत वेला बैठे। तो जैसे बाबा ने कहा ना, देखो वातावरण वृत्ति को बदलने वाला है यहाँ पर, तो ये संकल्प लेके बैठना होगा अमृत वेला कि ये मेरी चीज है जो बाधा बन रही है मेरे पुरुषार्थ में और अब मुझे इसको चेंज करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ बैठ गए और सोचे कि ये हो जाएगा, तो वैसा भी नहीं है। इधर हमको काम करना पड़ेगा उस पर, उस वृत्ति को बदलने के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को क्रोध बहुत आता है तो वो सिर्फ अगर ये सोचे उठ के कि मैं क्रोध मुक्त हूँ, ये वृत्ति को बदलना है उसको, तो ऐसा नहीं होगा। उसको उस क्रोध पर काम करना पड़ेगा कि मुझे दिन भर, देखो अमृत वेला भी डिपेंड करता है कि हमारी दिनचर्या कैसी है ना, तो दिन भर में हम क्या कर रहे हैं, दिन भर में क्या संकल्प कर रहे हैं, तो मुझे क्रोध क्यों आता है, मेरा क्रोध आने के क्या कारण है, उसका निवारण क्या है। तो अगर हम ऐसे सब सोचेंगे तब जाके हमारी वृत्ति उस वायुमंडल में परिवर्तन होगी। जैसे लास्ट वीक चर्चा हुई, किसी को मांगने की आदत होती है, तो मुझे अगर ये वृत्ति को चेंज करना है, मैंने अपने आप में ऑब्जर्व किया कि जैसे मुझ में ये है, तो अगर मुझे ये चेंज करना है तो मुझे पहले चिंतन करना पड़ेगा उस पर कि कहाँ कहाँ मैं मांगती हूँ, कहाँ कहाँ मैं किस चीज के लिए मांग रही हूँ लोगों से, तो फिर उस पे काम करके फिर अमृत वेला जब हम बैठेंगे तो वो चेंज होगा। किसी की जैसे आदत होती है रोने की आदत है, किसी की आदत होती है बीमारी की, अपनी बीमारी के बारे में लोगों को बताने की, तो ये भी पुरुषार्थ में बाधा बनता है, आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम जाके लोगों से डिस्कस करते हैं तो इतनी लोगों की एनर्जी उसमें आती है और फिर दिन भर में वो लोगों की एनर्जी उसमें मिलती है, और हम फिर अमृत वेला सोचते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो कैसे ठीक होगा ना वो। तो कहीं ना कहीं हमको दिन भर भी काम करना पड़ेगा। जब अमृत वेला, बाबा ने एक महावाक्य कहा है कि सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, अमृत वेला का समय बहुत अच्छा है, भगवान हुआ अच्छे। हमेशा विचार सागर मंथन प्रॉब्लम्स का नहीं करना है, इसीलिए तो कह रहे ना कि दिन भर का समय भी आपके लिए है, तो दिन भर भी आप सोचो उसके बारे में और फिर अमृत वेला उस वृत्ति से बैठो, संकल्प से बैठो कि ये मेरा चेंज हो जाए। बाबा से शक्ति लो, जैसे कि मांगना नहीं है, बाबा ने हमेशा कहा ना कि आप तो अधिकारी बच्चे हो, भिखारी नहीं, जैसे भिखारी जैसे नहीं बैठना है कि मुझे ये दे दो वैसे वैसे मांगने वाले नहीं है हम। जैसे कि बाबा की शक्ति मिले मुझे उस चीज को सफल करने के लिए। हाँ वो छूट जाती है और वो भी है, लेकिन उस पे चिंतन भी करना पड़ेगा ना। ऐसे ही है ना, कोई चीज नहीं छूटती, ऐसे ही कोई चीज नहीं छूटती। जब तक हमने उसको अपने संकल्प में नहीं लाया तब तक वो नहीं छूटेगी। तो वो भी एक है। तो वृत्ति वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप वरदानी आत्माओं की स्थिति भी बाप के विशेष वरदानों के छत्र छाया के कारण बाप समान संपन्न और दातापन की होती है। अब ये भी है जैसे बाबा कह रहे हैं ना यहाँ कि पुकार सुनने का समय है, वरदान देने का समय, वरदान लेने का समय है। तो हम बाप समान, हमारी बाप समान स्थिति उस समय दातापन की स्थिति है। तो जैसे हमने मनसा सेवा में इतने सारे पॉइंट्स निकाले थे कि किस किस को हमको सकाश देनी है, तो दातापन अभी यहाँ पर थोड़ा रहन दिल वाला गुण इमर्ज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को वाइब्रेशंस दे पाएंगे, सकाश दे पाएंगे। तो इसमें भी हमने कुछ लिस्ट सोची कि ऐसे कौन से मैक्सिमम चीजें जो हमको करना चाहिए अमृत वेला। जैसे कि हम सोच रहे थे अभी दिन की शुरुआत है और दिन भर में जो संसार की आत्माएं हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने वाली हैं, तो हम दातापन बनके, दातापन का स्वरूप बनके उनको ऐसे कुछ वाइब्रेशंस शक्तिशाली दे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। जैसे कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स होने वाला है, कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु होने वाली है, हॉस्पिटल्स में आत्मा इतनी पीड़ित है, इतनी दुख में है वो सब, तो उनको पहले से ही वाइब्रेशंस देना कि वो इस प्रॉब्लम को फेस कर सके। जैसे कि कहीं एक हॉस्पिटल में हम थे, हमारी बहन एडमिट थी, तो बाजू वाली पेशेंट इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मुझे इस दुख से, मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो जब हम उसको सुन रहे थे तो हमको लग रहा था ये तो सिर्फ एक पेशेंट एक हॉस्पिटल में ऐसा चिल्ला रहा है, एक ही वार्ड में। ऐसे दुनिया भर में कितने हॉस्पिटल्स हैं और कितने सारे पेशेंट्स हैं जिनको इतना दर्द होता है, तो उनकी पीड़ा को भी हमको समझकर उनको हल्का करना है। तो ये है कितने ऑपरेशन होंगे आज पूरे दिन भर में, ऐसे कई बड़े ऑपरेशन होने वाले, तो उनको सकाश दे दे। ऐसे कई रिलेटिव्स हैं जो आईसीयू के बाहर या वार्ड्स के बाहर बैठे होते हैं और वो बहुत चिंता में होते हैं, उनको एवरीडे 20,000 का बिल दिया जाता है हाथ में, 10,000-20,000 आपका पेशेंट आईसीयू में है, तो कितनी चिंता है संसार में। ये इस फीलिंग को इमर्ज करते हुए उनकी चिंता को कम करने के लिए उनको शांति का वाइब्रेशन देना कि इनकी चिंताएं कम हो जाए। हाँ लेकिन उस चीज को फेस करने के लिए, हर दिन आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ ना तो एक व्यक्ति आके आपको बड़े प्यार से बात करेगा और फिर आपके हाथ में बिल देगा कि ये आपका बिल है आज का, तो उनका काम ही वो होता है करने के लिए। तो चिंता रहती ना, तो उसको शांत करने के लिए, शांति के वाइब्रेशंस उनको देने के लिए, उनको शक्ति के वाइब्रेशंस की वो इस प्रॉब्लम को फेस कर सके। फिर नेक्स्ट हमने सोचा आज ऐसी कई आत्माएं हैं जो इंटरव्यू के लिए जाते, जॉब्स के लिए जाते और बहुत निराशा में है, और जैसे आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़पेपर में कभी कभी आता है ना कि ये असफलता के कारण किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया है ना, तो ऐसी आत्माओं को भी दातापन बन के उनकी, हाँ दातापन का स्वरूप बन के उनको वाइब्रेशन दो कि वो सफल हुए अपने कार्य में। तो ये कर सकते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में एग्जाम देने जाएंगे है ना, बहुत मेहनत की है जिन्होंने, तो ऐसे बच्चों को वाइब्रेशंस देना सुबह सुबह, उनकी बुद्धि में वाइब्रेशंस भरना कुछ अच्छे। फिर जैसे कि बाबा ने कहा कि हमारा मंदिर में भी हमारा दातापन का ही स्वरूप है, तो भक्त आज मेरे मंदिरों में आने वाले है तो उन भक्तों को मुझे वाइब्रेशन देने, वो कहीं कहीं अपनी मनोकामनाएं लेके आएंगे मेरे सामने, बहुत आशाओं से आएंगे, तो जैसे उनकी उनको भी वाइब्रेशन देना जायज। जो जायज माना क्या, शुद्ध, जो एक्चुअली मतलब यथार्थ, तो वैसी उनकी वो पूरी हो, तो ऐसे कुछ दे सकते हैं। कई ऐसे हमारे सेंटर्स है जहाँ सेंटर तो खुल गए, गीता पाठशाला खुल गई, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं है या स्टूडेंट्स कम है या उन सेंटर पर विघ्न बहुत है। तो हमारा विघ्न विनाशक रूप इमर्ज करके फिर हमको उनको भी है ना वाइब्रेशंस देने कि हाँ आह्वान करे सेंटर पर कि ये भाई बहने आए ये सेंटर पर। तो बहुत सारे कार्य है जो हमने पहले भी बहुत डिस्कस किया है मनसा सेवा की सीरीज में। हम इतने स्वमान में स्थित है ना कि मैं दाता हूँ तो इतना नशा रहेगा। तो बाबा ने यहाँ पे दातापन की स्थिति, दातापन की होती है आपकी, बाप समान संपन्न और दातापन की होती है, ऐसी स्थिति होती है। अमृत वेला ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं, इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त अभी इसके बारे में अलग अलग जगहों पर दिया हुआ है। जैसे ब्रह्म का मतलब कहते हैं बड़ा, आत्मा या भगवान या ब्रह्मा, और मुहूर्त मतलब समय। तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब भगवान का समय या तो श्रेष्ठ समय, सतोगुणी समय। तो कहते हैं कि हर समय पर अलग अलग गुणों का प्रभाव होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 से 5:30 या 3 से 6, जब तक सूर्य उदय होता है उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और उसके बाद जो समय होता है 6 बजे से 10 बजे तक उसको कहते हैं सतोगुणी समय, 10 से 6 को कहते हैं रजोगुणी समय, और 6 के बाद जो समय होता है उसको कहते हैं तमोगुणी समय। नहीं ये अलग, ये इस्कॉन वाले कहते हैं ऐसे कि ये इस प्रकार गुणों का प्रभाव होता है। ऐसे शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि अगर सफल ब्रह्म मुहूर्त जो है वो समय है सफलता की चाबी। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये समय पर सोना नहीं है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है अगर कोई ये समय सोता है तो। और वेदों में भी लिखा हुआ है कि अगर इस समय कोई जागता है और ध्यान करता है, योग क्रिया करता है कोई या पूजा करता है, तो उसको मानसिक और शारीरिक बीमारियां नहीं आती। और आयुर्वेद के अनुसार भी कहते कि इस समय का जो वायु है वो बहुत शुद्ध है, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही एक जगह पे हमने पढ़ा कि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि एक दिन राजा दशरथ ब्रह्मलोक में नहीं उठते, तो क्योंकि राम को वनवास मिल जाता है तो वो बहुत रोता है ना, तो वो जागता नहीं है सुबह में। तो लोगों को वहां चिंता होने लगती है कि राजा आज जागा क्यों नहीं। तो मतलब ब्रह्म मुहूर्त को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया। ऐसे ही सिख धर्म में अमृत वेला के समय को, ब्रह्म मुहूर्त के समय को बहुत इम्पोर्टेंस है। और वो कहते हैं, वो जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें कहते हैं कि अगर कोई सिख अपने आप को मानता है तो उसको ये अमृत वेला, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना ही चाहिए। और फिर वो लोग तब जाप करते हैं और उनकी सब अलग अलग ठीक चीजें है कि क्या क्या करना है उसमें। ऐसे ही मुस्लिम्स में, इस्लाम में जैसे आप जानते होंगे 5 टाइम की नमाज होती है, फजर, जोहर, ईशा, मगरिब और असर। असर, मगरिब, ईशा, ये 5 नमाज होती है। इसके अलावा एक नमाज होती है जिसको कहते हैं ताज्जुद की नमाज, और उसमें शर्त ये होती है कि इंसान को पहले सोना होता है, सोकर उठने के बाद ही वो नमाज कर सकते हैं। तो वो भी मतलब अर्ली मॉर्निंग होती है, 5 बजे के पहले होती है। और उस वो नमाज बहुत लोग नहीं पढ़ते क्योंकि सब लोग इतने जल्दी नहीं उठते। फजर की नमाज उठने नहीं, ताज्जुद की नमाज नहीं, तो नहीं वो भी मैं बोल रही ना, मतलब अगर आप 10 बजे 11 बजे सोए और आपकी आँख 2 बजे खुल गई तो भी आप वो नमाज पढ़ सकते हैं। 1 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई, 3 बजे खुल गई, मतलब फजर के पहले है ये नमाज। तो फजर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे, जैसे यहाँ पे 5:30 के आसपास होता है, 5:30 में 10 कम किधर 6:45 बजे, हर जगह का थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे। और टाइम हाँ ये कितने टाइम का, 5 टाइम की नमाज है ना, अलग अलग है वो, अलग अलग है सब जगह, अलग है सब जगह, अलग अलग नहीं। जैसे फजर में है ना 2-2 करके हैं, जोहर की अलग है, असर की अलग है, मगरिब और ईशा की अलग अलग है। कितना मिनट की बात नहीं है, उसमें दो फर्ज दो सुन्नत होती है, तो उसको आप कितने मिनट में भी करो, 5 मिनट में करो, कोई 10 मिनट में करता है, कोई 3 मिनट में करता है, और वो सूर्य उदय के पहले है, उसमें उठ के सिर्फ 2 रकात नफील पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं है। नमाज पढ़ते हैं ना, उसमें सब दुआ होती है, जैसे है ना यहाँ पर मंत्र होते हैं वहां पे दुआएं होती है, तो उसमें मतलब उसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि कहते हैं कि वो जहन्नुम की आग से आपको बचाएगा, आपको जन्नत में लेके जाएगा, आपको बीमारियों से दूर रखेगा, तो वो इम्पोर्टेंस है। तो कहने का भाव है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय का कितना इम्पोर्टेंस है हर धर्म में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट बाबा कह रहे, अमृत वेले बाप दादा हर बच्चे की संभाल करने के लिए, देखने के लिए विश्व भ्रमण करते हैं। उस समय आप पावरफुल स्टेज में बैठो तो सदा समीप का अनुभव करेंगे। उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो नए नए प्लान टच होंगे, प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं, उस समय बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो नए नए प्लान टच होंगे, प्रेरणाओं को कैच कर सकेंगे। तो इसके बारे में भी अलग अलग मुरली में पॉइंट्स आए हैं बाबा की। तो जैसे बाबा ने कहा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फ्रेश होकर बाबा के पास सवेरे सवेरे पहुंच जाओ, और बाबा कहते हैं कि जैसे साकार में तुम पहुंचते थे तो तुमको उत्तर मिलता था, ऐसे ही अभी अव्यक्त बाप दादा को अपने समीप का अनुभव करो और इसकी प्रैक्टिस करो बार बार, तो फिर आपको उसका रिटर्न मिलेगा। और एक मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे जब संकल्प करते हैं तो बाप दादा के पास बच्चों के संकल्प पहुंचते हैं, लेकिन कितनी तीव्र गति से हमारे संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं ये उस आत्मा की निर्विकारी स्थिति पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो हमारी कितनी निर्विकारी स्थिति उस समय, क्योंकि लोगों को लगता है हम तो बैठे हैं, हम तो सोच रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच रहा, तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे संकल्प कितने फास्ट बाबा के पास पहुंचते हैं। फिर बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे बैठ तो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बाबा से ये प्रॉब्लम का सलूशन लेंगे, लेकिन उनके मन मत मिक्स होती है उसमें, क्योंकि वो उत्तर अपने मन में लेकर ही बैठते हैं साथ में कि ऐसा तो नहीं होगा, ये ऐसा होना चाहिए, हमारे ख्याल से तो ऐसा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जब बाबा के पास बैठे हो टचिंग लेने के लिए तो प्लेन बुद्धि होकर बैठो, अपनी मनमत को मिक्स मत करो उसमें। और बाबा ने सेवाओं के लिए भी कहा है कि अगर बच्चे क्या करते हैं, हद के आधारों के पास जाते हैं तो फिर बाबा क्यों मदद करेगा। तो अगर कोई किसी को सेवा के लिए टचिंग चाहिए तो बाबा कहते हैं प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो प्लानिंग आपको टच होंगी, नई नई प्लान सेवाओं की। और बुद्धिमानों की बुद्धि आपकी बुद्धि को कैच कराएगा, बाबा ने कहा। तो अपनी बुद्धि को बाप के हवाले कर दो। तो ये है कि जब हमको कोई प्रेरणा चाहिए, कोई टचिंग चाहिए, तो हमको प्लेन होके बैठना पड़ेगा, बाबा प्लेन बुद्धि होकर बैठना पड़ेगा। हम हमारी ऑलरेडी सॉल्यूशंस लेके बैठते हैं इसलिए हमको उत्तर नहीं मिलते, फिर वही रिवाइज होता है। कई लोगों को हमने देखा है डायरी पेन लेके अमृत वेला बैठते हैं और कुछ लिखते हैं, तो शायद उनको टचिंग आती है तो वो शायद लिखते हैं वो टचिंग्स को, तो वो भी है, अभी उनका होता होगा वैसे, फिर पॉइंट भूल गई तो अमृत वेला के बाद इसलिए लिखते हैं वो। कई लोग डायरी पेन लेके लिख बैठते हैं, तो ये प्रेरणाओं की बात हुई। फिर तीसरा पॉइंट है, अमृत वेला सहज प्राप्तियों की वेला है। अमृत वेला वरदान के रूप में जो प्राप्ति करने चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि वरदाता और भाग्य विदाता बाप उस समय भोले भगवान के रूप में होते हैं, इसलिए जो तकदीर की रेखा खिंचवाना चाहो वो खिंचवा सकते हो। अमृत वेले हर एक के लिए खुले भंडार है, जितनी ऊंच प्रारब्ध की झोली भरने चाहो भर सकते हो, बाप दादा की खुली ऑफर है, जितने जन्मों के लिए चाहे श्रेष्ठ लकीर खिंचवा सकते हो। अष्ट रत्नों में आना हो या 108 की माला में आना हो, उस समय लव फुल बाप के लव के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हो। तो बाबा ने कहा खुली ऑफर है, दिन भर में वो अलर्ट रहता होगा। नहीं वैसे बाकी कथाओं में तो ऐसे नहीं दिखा है।
उसी समय स्पेशल बच्चों के लिए
हाँ बाबा ने ये भी कहा है कि अमृत वेला बच्चों के लिए है, बाकी सबकी लाइन पीछे है। सवाल है कि भोला भंडारी मॉर्निंग में क्यों, उसका माइंड भी फ्रेश होता होगा मॉर्निंग में। तो हर समय भोला भंडारी हुआ, आपका उत्तर आ गया। जैसे उत्तर कहा कि है ना अमृत वेला हर जगह अलग अलग समय है, ठीक है। हाँ पूरे ग्लोब पर होता है, पूरे ग्लोब पर, तो हर समय अलग अलग समय अमृत वेला है हर जगह, तो हर समय उसका भोला भंडारी रूप। नहीं वो बाबा ने कहा है ना कि भोले भंडारी। हाँ तो लेकिन अभी इस वक्त
समझे कि अमेरिका में जो है ना अभी मैं 10 बजे उठ करके बोल मेरे लिए तो
संगम युग पूरा ही अमृत वेला है बाबा ने कहा, तो लोग तो वो भी बोल सकते हैं। नहीं तो हम जहाँ रहते जिस समय वहाँ का उस समय हमको करना है। तो यहाँ पर इस चीज को भी एकदम शब्दार्थ जैसे नहीं उठाना है कि बस उस सुबह में बैठे और मांगे तो मिल जाएगा, 8 में आ जाएंगे, 108 में आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें मेहनत करने की बात है। तो एक जगह हमने पढ़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें लिखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट व्हाट यू वांट बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट यू गेट व्हाट यू आर। तो मतलब व्हाट यू वांट, हम जो चाहते हैं वो हमको नहीं मिलेगा, जो हम हैं वो हमको मिलेगा। कि कितनी बार लोग ये बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं और सोचते ना कि उस चीज को बार बार सोचो कि वो मेरी है तो मेरी हो जाएगी या मैं ऐसा हूं। तो मैं व्हाट यू आर, आप जो आप जो हो वो आपको मिलेगा। तो ये बात है उसमें व्हाट यू आर। फिर लास्ट पॉइंट है, अमृत वेलों को ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्मा मुहूर्त भी कहते हैं क्योंकि सभी ब्रह्मा के समान नए दिन का आरंभ करते हो। ब्रह्मा मुहूर्त के समय का वायुमंडल ऐसा होता है कि आत्मा सहज ही स्वयं को ब्रह्म लोक के निवासी अनुभव कर सकती है। दूसरे समय में पुरुषार्थ करके आवाज से वायुमंडल से स्वयं को डिटैच करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अमृत वेले इस मेहनत की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। जैसे ब्रह्म धाम शांति धाम है वैसे अमृत वेले के समय भी स्वतः ही शांति और एकांत रहती है। साइलेंस के कारण शक्ति स्वरूप की स्टेज और शांति धाम निवासी बनने की स्टेज सहज ही धारण कर सकते हो। तो साइलेंस का वातावरण है, शक्तिशाली वातावरण है। अब सबसे पहले तो आज क्योंकि फर्स्ट सेशन है तो उठना, अमृत वेला उठना, बहुत लोगों की तो प्रॉब्लम ही है कि अमृत वेला उठ नहीं पाते। तो अमृत वेला जिसको जितने बजे उठना है, 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 4 से 4:45 का ऑफिशियल टाइम है। अलग अलग अमृत वेला के समय के बारे में, अमृत वेला के समय के 12 बजे,
2 बजे से 3-4 बजे तक का जो 4 बजे सो जाते हैं।
तो बाबा ने कहा है कि 12 बजे तक का जो समय है, 12 बजे तक के समय को छोड़ दो क्योंकि वो विकारी समय है, विकारी वायुमंडल है। 1 बजे के बाद का टाइम है वो अच्छा है। तो बाबा ने कहा 1 बजे के बाद आप कभी भी अमृत वेला कर सकते हो और 4:45 तक का टाइम है। तो आप 1 बजे उठो, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे और 4:45 तक अमृत वेला करो। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ जो आते हैं वो लोग तो बहुत रेगुलर है अमृत वेला में, लेकिन कई ऐसे बाहर जो लोग हैं जो अमृत वेला उठ नहीं पाते। तो हमने कुछ पॉइंट्स निकाली कि अमृत वेला उठने के लिए क्या क्या करें। तो सबसे पहले तो अपना गोल सेट करना है कि अमृत वेला मुझे कितने बजे उठना है। ऐसे नहीं कि कभी 1 बजे उठ रहा हो, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि ये निर्धारित टाइम पर हम उठेंगे। तो हमने सेट किया 3 बजे, तो हम 3 बजे उठेंगे। तो पहले अपने माइंड में गोल सेट करना पड़ेगा। और जैसे कभी कभार लोग क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, दूसरा 2 बजे उठ रहा है और हम 3:30 बजे उठ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट डे 2 बजे उठने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमारे सिस्टम को शॉक मिलता है एक कि है ना 2 बजे उठ गया, फिर नेक्स्ट डे सोते। तो वैसे भी नहीं करना है। तो सेकेंड पॉइंट है, अगर अमृत वेला को आपको बढ़ाना है तो 15-15 मिनट, 10-10 मिनट पीछे जाना पड़ेगा। तो उसको फिर सेट करके 15-10 मिनट पीछे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने की है नींद। लोग पुरुषार्थ बहुत करना चाहते हैं, हम देखते हैं बहुत लोगों को इतना इच्छा है पुरुषार्थ करने की, इतना इच्छा है अमृत वेला करने की, परंतु आके नींद करते आते हैं योग में और सोते सीधे सोते। तो उनकी नींद कंप्लीट नहीं होती। तो इसलिए नींद को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपकी नींद, योगियों की नींद तो 4 घंटा होनी चाहिए, तो वो इस बात को पकड़ के रखे। लेकिन एक्चुअली योगी की नींद 4 घंटा हो जाती है। आप जब योग करते 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 रहेंगे तो आपकी नींद ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। रिसर्च भी यही कहती है कि योगियों को कम नींद की आवश्यकता है। लेकिन अगर सबकी प्रकृति अलग है, अगर मुझे 6 घंटा लगता है, इनको 7, इनको 8, इनको 9, तो उसको अपनी नींद उतनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन पूरे ऐसा नहीं है कि रात में आप 9 घंटा सो जाओ या 8 घंटा, आप दिन में भी उसको कवर कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको वो कंप्लीट करना ही पड़ेगा अपनी प्रकृति के अनुसार, नहीं तो आप योग में सोएंगे। तो नींद अच्छी आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स, जैसे कि रात को सोने का टाइम एक फिक्स कर दे कि हाँ ये टाइम पे सोना है। तो बहुत सारी चीजें उसमें है कि अगर नींद नहीं आती किसी को तो क्या क्या करे। तो कहते हैं कि एटलीस्ट 4 से 5 घंटा पहले कुछ एक्सरसाइज या वॉकिंग होनी चाहिए ताकि शरीर थक जाए तो नींद आ जाए। फिर कहते हैं कि हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो अच्छा होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए। कभी बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा गर्म, तो लोगों को नींद नहीं आती। तो अपनी अपनी नींद की जो प्रॉब्लम्स है ना, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नींद अगर कंप्लीट नहीं होगी तो अमृत वेला आप आके सोएंगे। फिर आगे है कि अगर अमृत वेला उठना है तो नींद नहीं आ रही है, बहुत लोगों को नींद नहीं आती तो भी ऐसे ऐसे होते रहते हैं। तो जैसे बाबा ने सोने की विधि भी बताई है, तो उसके बारे में पढ़ के, जैसे बाबा ने कहा ना कि कुछ पढ़ के सो, योग करके सो, तो वो करना है। कहते हैं अगर 20 मिनट हमको नींद नहीं आती है तो हमको उठ जाना चाहिए और कुछ पढ़ना चालू करना चाहिए, फिर पढ़ते 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 नींद आएगी। कहते हैं रात को अगर एक कप गर्म दूध पीकर सो तो भी अच्छी नींद आती है, क्योंकि उसमें कोई ऐसे केमिकल्स है। तो ये सारी चीजें जिसको नींद नहीं आती, ठीक है। अब उठने के लिए बहुत लोग अलार्म यूज करते, तो एक ऐप है अलार्म का, जिसको बोलते हैं स्लीप अवेक साइकिल। तो जिनको हमारी जो स्लीप साइकिल है उसको समझना पड़ेगा। हमारी एक स्लीप साइकिल जो होती है ना, वो 90 मिनट्स की होती है। तो इंसान कम से कम जो अगर 4-5 घंटा सो के उठ रहा है तो 3 बार वो इस डीप स्लीप में जाता है। और फिर देखा होगा आप लोगों ने, कभी हम उठते हैं तो हमको भारी भारी लगता है सिर और फ्रेश नहीं होता है। दैट मीन्स हम कभी डीप स्लीप में होते हैं और उस टाइम पे हमारा अलार्म बजता है। इसीलिए तो लोगों ने, जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं, उसमें एक ऐप है जिसको बोलते हैं स्लीप अवेक साइकिल। उस पे सेट करके आप अपने बेड के पास सोएंगे ना, तो वो आप अगर आपने 3 बजे का सेट किया तो वह 2:30 से 3 बजे के बीच में आप जब अपनी लाइट स्लीप में होते हो उस टाइम पर वो आपको उठाता है। और जैसे कि वो कभी आपको 2:35 को उठाएगा, कभी 3:05 को उठाएगा, जब आप अपनी लाइट स्लीप में होते हो। तो बहुत लोग वो ऐप यूज करते हैं ताकि स्लीप अवेक वो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। तो लोग वो भी यूज करते हैं ताकि हम जब उठे तो हमको फ्रेश लगे उठने के बाद। नहीं, डिपेंड नहीं, ये जो स्टार्टिंग जिनको नहीं आता है, बिगिनर्स के, इसलिए मैंने कहा ना यहाँ के लोगों के लिए तो रेगुलर है अमृत वेला, लेकिन बाहर जो है उनको डिफिकल्ट होता है, तो वो ये सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। तो ये स्लीप अवे। दूसरा कि हमको कुछ ऐसी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि मॉर्निंग में, मतलब मेरे लिए उठना एक कुछ मुझे मिलने वाला है। जैसे अगर कोई हमको नेक्स्ट डे पिकनिक जाना है, जैसे अगर पिकनिक जाना होता है, कोई कहता है कि 3:30 बजे आपको पिकनिक जाना है, 3:30 बजे, तो है ना 2 बजे से उठ जाएंगे, तैयारी करेंगे, लेट ना हो जाए, बस ना छूट जाए, कितना होता है। तो वो कैसी आकर्षण है। बाबा ने ये भी कहा है, बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि आपके लिए अमृत वेला रोज पिकनिक है बाबा के साथ। तो जैसे फॉरेनर्स को नमकीन और मीठा अच्छा लगता है, वैसे आप लोगों को भी भिन्न भिन्न प्रकार के योग के अभ्यास करने अमृत वेला। तो अमृत वेला को पिकनिक भी बोला है बाबा ने। तो उस तरह से हमारे लिए कोई एक्साइटमेंट वाली चीज होनी चाहिए कि भगवान को मुझे मिलने जा रहा है, आज मुझे ये मिलेगा। मतलब अगर हमने उस अमृत वेला को टेस्ट कर लिया ना, तो फिर हम चाहे कितनी भी बारिश हो और ठंडी हो, हम अपनी चादर से उठ के आते ही है यहाँ पर। तो लास्ट पॉइंट है बेनिफिट्स, फायदे पता होने चाहिए कि उठे क्यों, अमृत वेला उठने के क्या फायदे। जैसे आज का ये पॉइंट है अमृत वेला का महत्व एवं फायदे, इसमें ये 20 पॉइंट है ना, तो क्या फायदा हो रहा है मुझे उठने से। तो तो अभी फायदे बताओ आप लोग, आप लोगों को क्या फायदा हुआ जो आप लोग रोज अमृत वेला कर रहे हो, एक एक बताएंगे। क्या नहीं, आपको क्या फायदा होता है तो आप उठते हो अमृत वेला? बहुत जब से मुझे सवाल कर रहे हैं आप लोग, अभी आप लोगों बोलो क्या फायदा होता है तो अमृत वेला उठते हैं? अच्छा लगता है, लाइट लग, शांति आपको, फ्रेशनेस। प्रकाश भाई, शरीर की बीमारियां कम हो गई इसलिए अमृत वेला करने लगे। देवेंद्र भाई, शक्ति का अनुभव होता है, खुशी का अनुभव होता है इसलिए उठते।
मिस किया उस दिन क्या होता है?
नहीं, हाँ बोलो अशोक भाई। नहीं, क्यों उठते, फायदा क्या होता है? हल्कापन, लाइट, शांति का अनुभव होता है। हाँ, सुबह का साथ अच्छा लगता है। तो दिन भर नहीं अच्छा लगता, बिजी हो जाते। विठल भाई, खुशी मिलती है, बहुत लोग खुशी मिलती है, लाइट होते है, शांति। हाँ, परिस्थितियों को इजी फेस कर सकते। दोपहर में नींद बढ़िया आती है इसलिए अमृत वेला उठते। ये तो कभी सोचा ही नहीं। जल्दी उठे सुबह में तो दोपहर में नींद अच्छी आएगी। सिस्टर, कमजोरी है वो, उसके लिए बाबा मदद करता है, और बाबा की श्रीमत जो पालन करते हैं उसके लिए खुशी और शक्ति मिलती है, खुशी। जितने भी पॉइंट सुनाए सारे अनुभव होते हैं। बोलो। अच्छा, सारा दिन फ्रेश होते हैं, अगर जल्दी उठते तो फ्रेश लगता है, 6 बजे उठते तो ज्यादा नींद आती है। अभी फिक्स हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि अभी अपना अमृत वेला का सीजन चालू हो गया। जी भाई, बाबा ने बोला ये सीजन है, अमृत वेला सीजन है। जैसे सस्ती मिलती है ना कोई कोई फल और सब्जी सीजन में, वैसे अमृत वेला सीजन है, क्योंकि प्राप्तियां बहुत सहज है इस समय। स्नेह की एक्स्ट्रा अनुभूति होती है। माता जी, दिनचर्या बहुत अच्छा होता है इसलिए हम इसलिए पानी पी लो, फ्रेश होता है। एक बहन ने कहा था कि हॉस्पिटल से अमृत वेला आते हैं पांडव भवन, क्योंकि कभी कभार बहुत ऐसा लगता है जाए नहीं, लेकिन क्यों आती हो? क्योंकि चाय मिल जाती है गरम गरम। ऐसे भी लोग हैं। चलो बोलो बोलो, पीछे से नागराज भाई, संबंधों का अनुभव होता है माता जी, खुशी और हल्कापन महसूस होता है। अमृत पान करने से ताकत अनुभव होता है, भोजन मिलता है, आत्मा को भोजन मिलता है, आत्मा चार्ज हो जाती है, फायदा मिला आपको उससे, चार्ज हो जाती है। बाबा की दृष्टि से शक्ति भी मिलती है और खुशी भी। तो लोगों को, सबको यहाँ पे कुछ ना कुछ अनुभव होता है, कुछ ना कुछ फायदा होता है, तब हम इतना उठ के आते हैं। नहीं, फायदा हमको क्या, जीवन में फायदा हुआ इसलिए हम अमृत वेला करने लगे। हाँ, तो एक तो बोला ना आपने, थैंक यू, ओम शांति।